नमस्कार भारत, 22 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। बैंकों के विलय के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने खोला मोर्चा, आज हड़ताल, बैंकिंग कामकाज पर हो सकता है असर।
हमको निश्चित रूप में मालूम है और मर्जर के बाद ब्रांचेस वो बंद करेगा।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की मोदी सरकार को सलाह,
देश खतरे में है तो सब लोग को एक साथ होके कुछ नई तरह का सोचना चाहिए।
और शादी के बाद मुश्किलों में घिरी छत्तीसगढ़ की अंजलि को क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत?
हमने एक दूसरे से प्यार किया है पर हमारी शादी को लव जिहाद का नाम दे दिया गया है।
खबरें खेल की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज बैंकों की हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल की वजह से देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसी साल अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने नए गठबंधन के साथ सरकार गठन की अपनी कोशिशें छोड़ दी हैं। अब उनके प्रतिद्वंद्वी पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंज के पास सरकार बनाने का मौका है। सितंबर में हुए चुनाव में ना तो बेनी गेंज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी और ना ही नेतन्याहू की पार्टी को बहुमत मिल पाया था। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो एकजुट सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेनी गेंज के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं। इन 28 दिनों में उन्हें अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करना होगा। चिली की राजधानी सैंटियागो में लगातार तीसरी रात भी कर्फ्यू लगाया गया। सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने कई जगहों पर तोड़फोड़ की। हजारों की संख्या में लोग शहर के सेंट्रल स्क्वायर में इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों ने ड्रम और सीटियां बजाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि अब हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मैसेज भेज सकता हूं कि चिली में क्या चल रहा है, साथ ही लोगों को सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी जानकारी दे सकता हूं। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। कनाडा की जनता देश के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट डाल रही है। इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जस्टिन ट्रूडो के सामने कंजर्वेटिव पार्टी के एंड्रयू शीयर मुख्य चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले एग्जिट पोल में किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। कनाडा के चुनाव में इस बार कई मुद्दे छाए रहे। एक महिला वोटर ने इस पर अपने विचार यूं रखे। मुझे लगता है पर्यावरण के मुद्दे पर अधिक चर्चा नहीं हुई। कुछ पार्टियों के नेताओं ने हमें निराश किया है, लेकिन यही राजनीति है। यहाँ सब अपनी अपनी योजनाएं बताते हैं। मुझे ग्रेटा थनबर्ग जैसे युवाओं से उम्मीद है। उनके जैसे कई युवा इस बार कनाडा में वोट डालने निकलेंगे। ये थे कनाडा में एक महिला वोटर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बरकॉ ने सांसदों के इस विचार को मानने से इनकार कर दिया कि जिसमें उन्होंने सरकार से ब्रेग्जिट समझौते पर वोटिंग करवाने की मांग की थी। जॉन बरकॉ ने कहा कि शनिवार को पहले ही इस पर वोटिंग करवाई जा चुकी है। इसके बाद ब्रेग्जिट का समर्थन करने वाले सांसद नाराज हो गए। अब यह समझौता पूर्ण संसदीय जांच के लिए जाएगा जिसमें कुछ और वक्त लग सकता है। फेसबुक ने बताया है कि उन्होंने फेक अकाउंट वाले 4 अलग अलग नेटवर्क को बंद कर दिया है। फेसबुक का कहना है कि इन नेटवर्कों के जरिए दुनिया भर के लोगों को बहकाया जा रहा था। इनमें से 3 नेटवर्क ईरान में जबकि 1 नेटवर्क रूस में चल रहा था। इनमें करीब 200 फर्जी अकाउंट चल रहे थे जिसके जरिए अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान के बाद अनुमान और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर संभावित तस्वीर पेश की जा रही है। हालांकि असल नतीजों के लिए 2 दिन करना होगा इंतजार। इस बीच आज एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र अर्थव्यवस्था बन सकती है। केंद्र सरकार के बैंकों के विलय के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारी संगठनों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल की अपील करने वाले संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मुख्य सचिव CH वेंकटाचलम से बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने बात की और सबसे पहले पूछा कि सरकार के फैसले का वो क्यों विरोध कर रहे हैं।
बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जनता को पैसा है वो डिपॉजिट के रूप में 127 लाख करोड़ है, उनका सुरक्षा चाहिए। लेकिन बैंक बड़ा होगा तो वो बड़ा बैंक बड़ा रिस्क करेगा, वो स्थिति हमारा देश में नहीं आना चाहिए। दूसरा है वो ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमको बड़ा बैंक चाहिए। और तीसरा है बैंक का एक ही प्रधान वो प्रॉब्लम है NPA है, वो 15 लाख करोड़ है। वो मर्जर के बाद रिकवरी होगा वो नहीं होगा, तो इसे वो कारण क्या है, बेनिफिट क्या है हमको निश्चित रूप में मालूम है। वो मर्जर के बाद ब्रांचेस वो बंद करेगा।
आपने एक बात का जिक्र किया कि जो कस्टमर है उसका पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा आपको क्यों लगता है?
कारण वो बड़ा बैंक बड़ा बड़ा लोन दे देगा, बड़ा लोन हमारा देश में रिस्क हो गया। नीरव मोदी है, वो किंग फिशर मल्या है, भूषण ऐसा पूंजीपति का लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, वो कृषि लोन नहीं, एजुकेशन लोन बहुत कम है, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, इसलिए क्यों ऐसा करना।
ये थे बैंक यूनियन नेता CH वेंकटाचलम। केंद्र सरकार ने बैंकों के विलय का ऐलान किया तो इसे बैंकिंग व्यवस्था के हित में बताया, लेकिन क्या वाकई ये कदम लाभकारी है और क्या इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा होगा? इन सवालों के जवाब के लिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने आर्थिक मामलों के जानकारों से बात की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में मजबूत और वैश्विक स्तर पर बड़े बैंक बनाने के लक्ष्य से 10 बैंकों का विलय किया जाएगा और नए बैंक अर्थव्यवस्था की कर्ज की जरूरतों को पूरा करेंगी। उनका कहना था कि ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होंगी। बैंकों के विलय का सबसे बड़ा कारण NPA यानी डूब गए कर्ज बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अब तक ये पैसे वसूल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में हल क्या है? अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला कहते हैं,
मैं समझता हूँ कि मर्जर के ऊपर हड़ताल करना उचित नहीं है। श्रमिकों का मेन प्रॉब्लम ये है कि जिन बैंकों में NPA ज्यादा है उनमें अकुशलता है, उनमें भ्रष्टाचार है, और बड़े बैंकों से विलय करने पर उस भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण होगा, इसलिए वे सरकारी कर्मी नहीं चाहते ये इस प्रकार का नियंत्रण, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं।
भरत झुनझुनवाला कहते हैं,
सरकार का मानना ये है कि कुछ बैंक कुशल हैं और कुछ अकुशल हैं, तो अकुशल बैंकों को कुशल बैंकों के साथ अगर विलय कर देंगे तो उनकी अकुशलता पर नियंत्रण हो जाएगा।
आर्थिक मामलों की जानकार वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन कहती हैं कि हाल में बैंकों से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनसे डर का माहौल पैदा होता है, लेकिन उनका मानना है कि डरने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए।
मैं नहीं समझती कि डरने की जरूरत है। अभी तक तो ऐसे हमारे देश में ऐसे हुआ नहीं कि कोई नॉर्मल जो बड़ा बैंक है वो फेल हो जाए, और मेरे ख्याल में हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर कोशिश करेगा कि हर डिपॉजिटर का जो पैसा है वो महफूज रहे और इसमें कोई किसी को तकलीफ ना आए।
भरत झुनझुनवाला भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के बैंकों के विलय के फैसले का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं,
यदि निजीकरण हो रहा होता या सरकार जमाकर्ता के डिपॉजिट के ऊपर जो सिक्योरिटी देती है उसमें कोई ढील की होती तो फिर कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता। विलय से तो कंज्यूमर को लाभ ही होगा अगर हम यह मान के चलते हैं कि अकुशल बैंक का कुशल बैंक में विलय होगा।
सुषमा रामचंद्रन कहती हैं कि बैंकों के विलय की घोषणा के बाद नौकरियां जाने का भी खतरा महसूस किया जा रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई घोषणा सरकार की तरफ से हुई नहीं है।
अभी ये मर्जर हो जाएगा तो अनुमान ये लगाया जाता है कि काफी सारे लोग जो सिर्फ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगे हैं वो ज्यादातर बैंक की जो एक्चुअल काम में जो जुट जाएंगे। सिर्फ ये मुझे लगता है कि शायद स्किलिंग की जरूरत होगी कि कई एम्प्लॉइज को कई लोगों को किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा।
लेकिन सरकार के फैसले से एनपीए पर क्या असर पड़ेगा? भरत झुनझुनवाला समझाते हैं कि कुछ एनपीए स्वाभाविक होते हैं जहां कोई व्यवसायी बाजार की परिस्थिति के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाता।
गड़बड़ी तब होती है जब या तो राजनीतिक दखल के कारण या सरकारी कर्मियों के अकुशलता और भ्रष्टाचार के कारण गलत लोन दिए जाते हैं और वे एनपीए हो जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो ग्रोथ रेट कम होने की आशंका है उससे एनपीए अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन वह स्वाभाविक विषय है, उसका बैंक मर्जर से कोई डायरेक्ट संबंध मुझे नहीं दिखता है।
वहीं सुषमा रामचंद्रन मानती हैं कि दूरदर्शी तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों का विलय अच्छा है। वो कहती हैं कि भारत को अभी और बैंकों की जरूरत है, न केवल विदेशी निवेश के लिए बल्कि देश की एक बड़ी आबादी को बैंकों से जोड़ने के लिए भी। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर करीबी नजर इस साल नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की भी है। उनके पास केंद्र सरकार के लिए सुझाव भी हैं। हमारे साथी अरुणोदय मुखर्जी ने दिल्ली में अभिजीत बनर्जी से बात की और सबसे पहले पूछा कि भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति को वो किस तरह से देखते हैं।
चिंता कई है कि इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी धीमे हो गए हैं। एक आम लोगों के कंजम्पशन के एक मेजर आता है, हर साल में आता है, 2014-15 में जो था अभी 2017-18 में उससे कम आ रहा है, ये काफ़ी चिंता का बात है।
तो आप अगर सलाह देंगे अभी जो वित्त मंत्री हैं और बाकी जो पूरी टीम है मोदी सरकार की, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? आप नोबेल प्राइज़ से सम्मानित हुए हैं, आप उस ओहदे पे हैं।
मैं सलाह दूंगा कि आप प्रोफेशनल्स जो है, हमारे कई कई अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जैसे रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, इनसे बात कीजिए क्योंकि इन लोगों से अच्छा बहस।
लेकिन रघुराम राजन साहब तो थे लेकिन वो चले गए, किन परिस्थिति में गए वो भी सुर्खियों में था।
वो सब है लेकिन जब देश खतरे में है तो सब लोग को एक साथ होके कुछ नई तरह का सोचना चाहिए।
तो ये आप मान रहे हैं कि देश खतरे में है? और
खतरे में है तो वो तो वाकई, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी पूरा बंद हो गया या कुछ नहीं, हो सकता है कि कुछ 5% हो रहा है या 3% हो रहा है या 6% हो रहा है, लेकिन ये जितने साइंस आप देख सकते हो इसमें लक्षण है जो जितने हैं उसमें कई चिंता के लक्षण हैं।
भारत सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं, कॉरपोरेट टैक्स मान लीजिए, टैक्स स्ट्रक्चर को रिलोक कर रहे हैं, जीएसटी में कुछ सामान जो है उन पर जीएसटी जो लागू है उसको कम किया है, क्या आप इन कदमों से आप संतुष्ट हैं एज एन इकोनॉमिस्ट?
कॉरपोरेट टैक्स में काफ़ी पैसा गवर्नमेंट का जो आमदनी था वो कम गया, उसको बढ़ा। अगर वही करना था तो वो पैसा मैंने तो गरीबों को देता था।
यही जो बात है इसको लेके कुछ विवाद खड़ा हुआ था, क्योंकि वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि प्रोफेसर बैनर्जी को मुबारकबाद लेकिन उनकी क्या लीनिंग्स है, लेफ्ट लीनिंग है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो एक तरीके से वो बड़े डिसमिसिव थे, तो उस पर आपको बुरा लगा?
थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ बोलो, देश के जब ज़रूरत होता है तब जो प्रोफेशनल्स है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इस एटीट्यूड में मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल्स, अगर आपको सोचना है कि ये सारे लोग वो लोग लेफ्टिस्ट है इसलिए वो जो बोलेगा वो गलत है, तो फिर प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं रहता है।
आपको लगता है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री ने आपको बधाई बात दी, दूसरी तरफ उनके मंत्री और सहयोगी जो है वो ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है और फॉर्मेलिटी में बस मुबारकबाद दे रहे हैं?
नहीं, खास इतना नहीं सोचा।
भारत में अगर आपको कोई एक पद दिया जाए, जैसे रघुराम राजन जी को दिया था, अगर आपको कोई पद दिया जाए आपके विषय से जुड़ा हुआ पद जिससे आप भारत के लिए कोई आप सलाह दे पाएं सलाहकार के तौर पे, तो क्या आप सहमति रहेगी आपकी उस पर?
अगर लगे कि देश के कोई ज़रूरत है तो सलाह तो मैं देने के मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी नौकरी छोड़ के मेरे बच्चे छोड़ के यहाँ आना नहीं है।
ये थे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी। आगे बढ़े उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी नवीन नेगी। जी नवीन,
जी वात्सल्य, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें और उसके बाद अलग अलग चैनलों पर जो एग्जिट पोल आते हैं उसके दावे जो आते हैं उससे खबरें जो हैं वो छाई हुई हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को दोनों ही राज्यों में बड़े अंतर से जीत मिलते हुए ये बताया गया है। और हालांकि एक और खबर जो साथ में है इसी से जुड़ी हुई कि दोनों ही राज्यों में जो वोट प्रतिशत है वो पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है।
4% वोटिंग जी पिछली बार बढ़ी थी ऐसा दैनिक भास्कर का कहना है और तब सत्ता बदली थी, इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है।
जी हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है इस बार। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लिखा है कि हरियाणा में 65.5% वोट पड़े जबकि पिछली बार जो है 2014 में 76.13% वोट पड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क
आया है इस बार।
जी बिल्कुल, और उसी से जुड़ी कई तस्वीरें हैं अलग अलग अखबारों में प्रकाशित, जैसे नवभारत टाइम्स में मनोहर लाल खट्टर दिखाई दे रहे हैं साइकिल पे जा रहे हैं वोट डालने के लिए
मुख्यमंत्री।
जी जी, और हिंदुस्तान अखबार में जो है दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर में बैठकर वो बूथ तक पहुंचे वोट डालने के लिए। और मुंबई में कई सेलिब्रिटीज़ हैं, सलमान खान हैं, आमिर खान हैं जिन्होंने वोट डाले, तो ये तस्वीरें हैं खूब सारी छाई हुई। लेकिन एक खबर है जिसका जिक्र करना चाहेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी प्रमुखता से इसको छापा है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने कल सोमवार को 2017 में हुए अपराध संबंधी रिपोर्ट जो है अपनी जारी कर दी। इस रिपोर्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा था क्योंकि 2019 आ चुका है, अब 2017 की रिपोर्ट अब जारी की है। और लगभग सभी अखबारों ने रिपोर्ट का जो डेटा उसको तो प्रकाशित किया है और उसमें बताया ये गया है कि देश में जो अपराधों की संख्या है उसमें 3.6% की वृद्धि हुई है और पिछले 5 सालों में जो है रेप के मामले थोड़ा कम हुए हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ अलग तरह से इसको बताया है। उसने अखबार लिखता है कि NCRB ने इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें भीड़ के द्वारा जो हत्या होती है या धार्मिक कारणों से जो हत्या होती है उन आंकड़ों को जो है उन्होंने शामिल नहीं किया, और इसके लिए जबकि अलग से जो है काम किया गया था इन अपराधों से जुड़े जुटाने के लिए। और एक सूत्र के हवाले से अखबार लिखता है कि इन आंकड़ों को जुटाने के लिए एक अधिकारी जो है उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए अखबार से कहा है कि 2015-16 में ही ये जो है नई श्रेणियां शामिल की गई थी NCRB में डाटा जुटाने के लिए, लेकिन जब इन आंकड़ों को अब शामिल नहीं किया गया रिपोर्ट में तो वो बड़े हैरान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया है।
जी
जी, इसके साथ ही साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें हर अखबार में हैं, वो उन्होंने सियाचिन का जो बॉर्डर है उसको पर्यटकों के लिए खोल दिया है, वहाँ आम सैलानी जा सकते हैं घूम सकते हैं वहाँ पे। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज जो इलाका है वो भारत पाकिस्तान के बीच का जो है एक रण क्षेत्र है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है।
जी,
तो अब यहाँ पर लोग जा सकेंगे और सेना जो है इसका तय करेगी नियम कि किस तरह से लोग वहाँ पर जाएंगे, किस तरीके से घूम सकेंगे। और इसके अलावा दिल्ली की एक खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर जिसको तोड़ दिया गया था केंद्र के आदेश पर, अब उसको जो है दोबारा उसी जमीन पर और ज्यादा दुगनी जमीन पर बनाने का
ये
आदेश दिया है कोर्ट ने।
जी बहुत शुक्रिया नवीन अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात छत्तीसगढ़ के उस चर्चित मामले की जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ये मामला धमतरी जिले में हुए एक प्रेम विवाह का है। धार्मिक संगठनों का आरोप है कि ये लव जिहाद का मामला है, जबकि शादी करने वाली युवती और युवक का आरोप है कि इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाले 33 साल के मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी और 23 साल की अंजलि जैन ने पिछले साल 25 फरवरी को रायपुर के आर्य मंदिर में शादी की थी। इब्राहिम का दावा है कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया था, इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रखा था, लेकिन परिजनों की नाराजगी के बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और तब से स्थानीय अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पति के बजाय माता पिता के साथ जाने वाली अंजलि ने इस साल फरवरी में राज्य के पुलिस महानिदेशक से गुहार लगाई कि उनके माता पिता उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें घर से मुक्त कराया और रायपुर के सखी सेंटर में उन्हें रखा गया जहां वे पिछले 7 महीने से रह रही हैं। उनके कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध है और अदालती सुनवाइयों के चक्कर में वे चाह कर भी अपने पति के साथ नहीं जा पा रही हैं। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद ठहराकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बीमारी से जूझ रही अंजलि जैन ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करती हैं।
हमने सिर्फ लव मैरिज की है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, पर हमारी शादी को लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। मेरे पापा, हिंदू संगठन और समाज वाले मिलके हमारे शादी को, हमारे प्यार को सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग दे रहे हैं।
अंजलि जैन का कहना है कि उनके पिता और दूसरे धार्मिक संगठनों को उनके निजी जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है।
मेरे पिताजी ने मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर रायपुर में एक कैदी की तरह जीवन जीने को मजबूर हो चुकी हूँ। मुझे मेरे मर्जी से मेरा जीवन चुनने की आज़ादी दी जाए।
लेकिन अंजलि के पिता अशोक जैन का कहना है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर शादी की गई है। धार्मिक संगठनों, धर्मगुरुओं और राजनेताओं के साथ इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय अशोक जैन कहते हैं,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। लव जिहाद करके लड़की को फंसाते हैं और उधर पार्सल कर देते हैं, फॉरेन में चली जाती है, उनकी किडनियां, लीवर सब बेच दिया जाता है, अंग प्रत्यर्पण हो जाता है। 7 महीने से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी दवाइयां सब बंद कर दिया गया है। उस लड़की के साथ क्या अत्याचार हो रहा समझ से परे है।
लेकिन धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक बालाजी राव सोमावार अशोक जैन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं।
उनकी पुत्री बालिग है, उनकी पुत्री के शिकायत पर पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया है उनके घर से, और उनकी पुत्री के ही कहने के अनुसार उनको सखी स्टाफ सेंटर में रखा गया है। सखी स्टाफ सेंटर प्रशासन द्वारा संचालित संस्था है, वहाँ पर कोई भी जाके उनसे मिल सकता है।
अपना धर्म बदलकर अंजलि के साथ विवाह करने वाले मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्य का कहना है कि राज्य में होने वाले प्रदर्शनों और अदालती कार्रवाइयों से वे थक चुके हैं।
सोचा नहीं था कि ये चीज़ें इतनी आगे तक आ जाएंगे, लेकिन अब आगे बढ़ चुकी हैं सारी चीज़ें, और हर जगह से विरोध हो रहा है। पॉलिटिकली भी प्रेशर बन जाता है, कभी अरेस्ट होने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ बंद होने की बातें हो जाती हैं। अब बस लगता है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए ताकि अब हम अपनी ज़िंदगी चालू कर सकें।
मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और उम्मीद की जा रही है कि अंजलि जैन को कम से कम रायपुर के सखी सेंटर से मुक्ति मिल सकेगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
उधर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के भोला जिले में एक सोशल पोस्ट का विरोध सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमारी सहयोगी मानसी दास ने इस मामले को लेकर BBC बांग्ला सेवा के संवाददाता शुभ ज्योति घोष से बात की।
देखिए मानसी, मामला ये है कि ये सब की शुरुआत हुआ था एक फेसबुक पोस्ट से। भोला की बुरहानुद्दीन नाम के जो जगह जिधर ये हादसा हुआ था, पिछले शनिवार को ये हादसा शुरू हुआ था, 2-3 दिन पहले उधर एक हिंदू युवा जाके पुलिस स्टेशन में बताया था कि उनका फेसबुक आईडी हैक हो गया, और उसी आईडी से इस्लाम की जो प्रॉफेट नोबी को लेकर कुछ आपत्तिकर पोस्ट हुआ था, जो अवमानना कर है इस्लाम की नबी की, रसूल के खिलाफ, रसूल के लिए। तो उसी को लेकर उधर के काफ़ी सारे इस्लामिक ग्रुप और जो मदरासा ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस युवा को खिलाफ दंड की दाबी में ये लोग इकट्ठे हो गए। एक बहुत सारे जमायत की कॉल किया गया था उधर। वैसे हमको जो खबर मिल रहा है, पुलिस वो मामला को निपट लिया था, लोकल मस्जिद को, इमाम को समझा कर कि ये फॉल्स एलिगेशन है, इनका आईडी हैक हो गया था, ये मुजरिम नहीं है। लेकिन इन द मीन टाइम बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे उधर, और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था ये जो वर्शन पुलिस ने दिया था। तो इसी के लेकर हंगामा हुआ। बांग्लादेश पुलिस बोल रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ, तो वो सेल्फ डिफेंस में वो फायरिंग करने के लिए मजबूर हो गया था, और उसी में 4 लोग को मत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुआ।
लेकिन इस तरह की घटना बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले बुद्धिस्ट मंदिरों और हिंदू मंदिरों पर भी हमले हुए हैं।
बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोडस अपरेंडी ये सभी घटने में बिल्कुल एक जैसा है। आप जो 2012 की घटना के जिक्र कर रहे थे, वो हुआ था कक्स बाजार के पास रामू नाम के एक जगह पे। उधर टारगेट हुआ था बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। उधर भी एक बुद्धिस्ट युवा उत्तम देव नाम के, उनका फेसबुक आईडी हैक हुआ था, ऐसी एलिगेशन है। और उधर भी रसूल के खिलाफ कोई आपत्तिकर पोस्ट होने का इल्जाम था, उसी को लेकर बुद्धिस्टों के घरों पे आग लगा दिया गया और बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिरों को भी चोट पहुंचा। उसके बाद 2016 में ब्रह्मनबेरिया डिस्ट्रिक्ट में नसीरनगर नाम की एक जगह है, उधर एक हिंदू युवा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर घटना में स्टाइल ऑफ ऑपरेशन वही है, किसी माइनॉरिटी युवा को टारगेट करके उनका आईडी हैक करके उस आईडी से कोई रसूल के खिलाफ कोई पोस्ट करके पब्लिक को इकट्ठा किया जाए और इस बहाने को लेकर कोई हिंदुओं कभी हिंदुओं को घर पे कई बुद्धिस्ट को मंदिरों पे हमला चलाया गया।
जैसा आपने बताया कि 2012 में ऐसी घटना हुई थी, फिर 2016 में भी ऐसी घटना हुई थी
और भी हुआ था जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन तो ऐसे भी और भी
एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी है। तो क्या उन घटनाओं में इसके पीछे किस गुट का हाथ है, ऐसा कुछ पकड़ा नहीं गया?
देखिए, कुछ तो वैचारिक प्रक्रिया तो जरूर शुरू हुआ था, लेकिन इसके कोई किसी का साजा हुआ, किसी का दंड मिला ऐसे हमने नहीं सुना। ऐसे इस भोला का घटना में अननोन एंड अननेम्ड लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मतलब कोई की अक्यूज्ड तो उधर है नहीं। और जैसे होता है बांग्लादेश में भी इसी घटना में कोई लॉजिकल कंक्लूशन में ये सब मामला कभी नहीं पहुंचता, तो वही हम देखते आ रहे थे 2012 से अभी तक। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बिल्कुल ये कहा है जो भी अपराधी है उनको सजा मिलेगा, लेकिन पिछले प्रेसिडेंट्स अगर देखें तो ये नहीं लगता कि इस बार भी किसी का दंड मिलेगा।
जानकारी दे रहे थे शुभ ज्योति घोष। आज नजर रांची पर भी होगी, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम जीत के करीब है। सुनिए खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले बात क्रिकेट की, जहां पर रांची में खेला जा रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला। रांची में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत वैसे ही आगे है और ये मुकाबला भी अगर जीत लेता है तो 3-0 से ये सीरीज भारत अपने नाम कर लेगी। और आसार कुछ ऐसे ही है, क्योंकि दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका केवल 132 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर, यानी कि भारत क्लीन स्वीप से 2 विकेट दूर है। तो वहीं बॉक्सिंग के रिंग पर सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन ने अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर्स से पहले भारतीय टीम में चयन के लिए एमसी मैरीकॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबले की मांग की है। उन्होंने इसके लिए गुरुवार को खेल मंत्री किरण रिजिजू को पत्र भी लिखा है। इस पर किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि वो फेडरेशन से सिर्फ देश और एथलीट के लिए बेहतर निर्णय लेने के लिए ही कह सकते हैं। मैरीकॉम ने हाल ही में रूस में खत्म हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। मैरी को इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए निखत पर प्राथमिकता दी गई थी। बीएफआई ने ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए भी मैरीकॉम को ही भेजने की योजना बनाई है। अगर ऐसा हुआ तो महासंघ अपने उस फैसले से पलट सकता है जिसमें उसने कहा था कि स्वर्ण और रजत पदक जीतने वालों को ही सीधा प्रवेश मिलेगा। क्वालिफायर मुकाबले अगले साल फरवरी में चीन में होंगे। निखत ने अपने पत्र में लिखा था कि खेल का आधार निष्पक्षता है, हर समय खुद को साबित करने की जरूरत होती है, यहाँ तक कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को भी क्वालिफाई करने के लिए मुकाबला करना होता है। अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट करके निखत जरीन की इस मांग पर अपनी मोहर लगाई थी, जिस पर मैरीकॉम ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि अभिनव बिंद्रा को बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसे में वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे।
और हम बता दें कि बीबीसी 100 वीमेन सीजन 2019 की कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में होनी है। इस कॉन्फ्रेंस में आपकी मुलाकात होगी उन महिलाओं से जो अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं। और अब चलते चलते मुख्य समाचार नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज बैंकों की हड़ताल बुलाई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार गठन की अपनी कोशिशें छोड़ दी हैं। अब उनके प्रतिद्वंदी पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंज के पास सरकार बनाने का मौका है। कनाडा की जनता देश के लिए नए प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए वोट डाल रही है। इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जस्टिन ट्रूडो के सामने कंजर्वेटिव पार्टी के एंड्रयू शेयर शेयर मुख्य चुनौती पेश कर रहे हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बरकॉ ने सांसदों के उस विचार को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने सरकार के ब्रेग्जिट समझौते पर वोटिंग करवाने की मांग की थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी तिलक राज भाटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।